તારીખ 8/11/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 511 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 121.
શ્રી મદ્રાજચંદ્ર વચનામ પત્ર 511માં શ્રી અંજાર સ્થિત પરમ સ્નેહી શ્રી સૌભાગ્ય સૌભાગ્યભાઈ કોઈ વ્યાપારના કારણે અંજાર કચ્છમાં ગયેલા છે, ત્યાં એમને પત્ર લખેલો છે. આ આપનો સ્વવિગત કાગળ એક તથા પત્તું એક પ્રાપ્ત થયું છે. એક કાગળ અને એક પોસ્ટકાર્ડ, પત્તું એટલે પોસ્ટકાર્ડ. તેમાં લખેલા પ્રશ્નો મુમુક્ષુ જીવોએ વિચારવા યોગ્ય છે. ખાસ કરીને મુમુક્ષુની ભૂમિકાનો વિષય સૌભાગ્યભાઈ ચર્ચા કરતા કુદરત નહીં આવતા. અચ્છા, જો જો સાધન યહ જીવને પૂર્વકાલ મેં કિયે હૈ, વે વે સાધન જ્ઞાની પુરુષ કી આજ્ઞા સે હુએ હૈ, એસા જાનને મેં નહીં આતા. યહ બાત એસા નહીં લગતા, યહ બાત સંદેહ રહિત હૈ, સંદેહ રહિત લગતી હૈ. ક્યા કહેતા હૈ કે મુમુક્ષુ જીવને ધર્મ કે સાધન અનેક પ્રકાર કે કિયે હૈ, લેકિન જ્ઞાની કી આજ્ઞા સે નહીં કિયે હૈ, જ્ઞાની કી આજ્ઞા પૂર્વક નહીં કિયે હૈ, અપને મનમાની કિયા હૈ. કભી ઉપવાસ કર લિયા, કભી દાન દે દિયા, કભી શાસ્ત્ર પઢ લિયા, કભી પૂજા ભક્તિ કર લિયા, જ્ઞાની કી આજ્ઞા કે અનુસાર નહીં કિયા હૈ. ઇસકા મતલબ ક્યા હુઆ કે મુમુક્ષુ જીવ કો કભી ક્યા કરના ચાહીએ વો ઉસકો માલુમ નહીં, કે અભી મેરી યોગ્યતા મેં મુજે ક્યા કરના ચાહીએ. જૈસે દૂધ ભી ગાય કે આંચલ મેં સે નિકલતા હૈ ઓર છાસ ભી ઉનમે સે હી બનતી હૈ, લેકિન કભી દૂધ નહીં ખાના ચાહીએ, કભી છાસ નહીં ખાના ચાહીએ, કભી ક્યા ખાના ચાહીએ, કભી ક્યા નહીં ખાના ચાહીએ, વો ખુદ કો માલુમ નહીં હોતા હૈ. તો કુછ ભી ખા લેતા હૈ, કભી દૂધ ખા લેતા હૈ, કભી નહીં ખા લેતા હૈ, કભી છાસ ખા લેતા હૈ, પર તકલીફ પાતા ભી હૈ જી, કે ખુદ કો માલુમ નહીં કે મેરે બોડી મેં કિસ ચીજ કી એલર્જી હૈ. બાત તો મામૂલી હૈ, દૂધ છાસ ખાના વો તો મામૂલી બાત હૈ, ફિર ભી એલર્જી કન્ડિશન વાલે કો તો અનુકૂળ નહીં પડતા, ઉનકો તો તકલીફ દેતા હૈ. ઇસ તરહ સે મુમુક્ષુ જીવ કો ભી કબ ક્યા કરના ચાહીએ, કબ ક્યા નહીં કરના ચાહીએ વો માલુમ નહીં હૈ. અપની મનમાની રીત છે, અપને કો અનુકૂળ પડે, અપની રુચિ હોવે વૈસા કર લેતા હૈ, बहुत बार तो जीव क्या करता है कि संप्रदाय में जो परंपरा चलती है वही परंपरा अनुकूल सब कर लेता है। हमारे संप्रदाय में सब ऐसे करते हैं धर्म, हमको भी ऐसे धर्म करना चाहिए। और ऐसे धर्म करने में संप्रदाय वाले गिनती भी करते हैं कि देखो वो कितना करता है, वो ज्यादा करता है, तो गिनती भी होती है। तो उस तरह से लोक संगना से भी धर्म करने लग जाता है जी, तो लोगों में अपनी गिनती होती है, समाज में अपनी गिनती होती है। यदि ऐसा हुआ होता तो मैंने ज्ञानी की आज्ञा से हुआ होता तो जीव को संसार परिभ्रमण होता नहीं, उसका संसार परिभ्रमण मिट जाता है। ज्ञानी की आज्ञा से अगर वो चलता तो उसका संसार परिभ्रमण रहता नहीं, मिट जाता। लेकिन धर्म साधन अनंत बार किया और संसार परिभ्रमण मिटा नहीं, तो यथार्थ रूप से कुछ किया नहीं। जो कुछ करना चाहिए यथार्थ रूप से वो यथार्थ रूप से तो नहीं किया। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है, यह भाव में जीव को आड़ा प्रतिबंध जैसी है। अब ज्ञानी क्या आज्ञा करेंगे, तो तुम स्वच्छंद से धर्म साधन मत करो अपनी मनमानी रीत से, पर पहले प्रतिबंध को हटाओ। प्रतिबंध को तो हटाता नहीं पर धर्म साधन करता है। जैसे कि उपवास आदि करता है लेकिन परिवार प्रति का प्रतिबंध वैसा का वैसा रहता है, लोक संगना वैसे की वैसे रहती है। लोक संगना और कुटुंब प्रतिबंध वैसा का वैसा रहे और देह कष्टी करके उपवास आदि करे तो देह प्रतिबंध तो छूटेगा कहां से, पहले दो प्रतिबंध तो छूटे नहीं, तीसरा कहां से छूटेगा। तो पहले तीसरा वाला का काम करेगा और दो वो को वो रह जाएगा, तो उसने ज्ञानी की आज्ञा से काम नहीं किया। ऐसे ऐसे त्याग करता है, ध्यान दान देता है लेकिन पैसा का लोभ अंदर में उतना का उतना रहता है, दान देने के बावजूद भी प्रतिबंध तो छूटा नहीं। तो ज्ञानी जो है वो मूल में से जड़ में से कैसे संसार रोग मटे उसकी कार्य पद्धति जानते हैं और उसी के अनुसार उनको आज्ञा देते हैं। ऐसे कोई शास्त्र पढ़ लेते हैं, मनमाने शास्त्र पढ़ते हैं, बुद्धि है तो समझने की कोशिश करते हैं लेकिन भावना में तो आते नहीं, जिज्ञासा में तो आते नहीं, और पढ़कर पढ़ पढ़ करके जिज्ञासा को खो देते हैं कि हम जानते हैं वो बात ऐसी है, वो बात ऐसी है, उस गाथा में ऐसे कहते हैं, उस गाथा में ऐसे कहते हैं, अनेक प्रकार की अपेक्षा विवेक्षा सबकी जानकारी कर देता है और शुष्क ज्ञानी हो जाता है। तो ऐसे तो आत्म कल्याण नहीं होता। कोई ध्यान करने बैठ जाते हैं, कोई ज्ञान करने बैठ जाते हैं, कोई ध्यान करने बैठ जाते हैं। ज्ञानी की आज्ञा से किया तो क्या है कि ध्यान के कुछ प्रयोग करेंगे तो मन की चंचलता घटेगी। पहले मन की चंचलता ज्यादा थी, अभी ध्यान की हैबिट होने से थोड़ी चंचलता कम हुई। लगेगा कि चलो अच्छा, अपने को ध्यान तो अच्छा होता है, फायदा हुआ, लेकिन वैसे आत्मकल्याण होता नहीं। चंद्रेश भाई उनको ऐसा हुआ, बोले कि ध्यान करो। अरे भाई ध्यान कैसा, अभी जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं उसको स्वरूप का ध्यान होता नहीं, तो स्वस्वरूप का तो ध्यान होगा नहीं और परतत्व का ध्यान तो अनादि से करता आया है, है?
और घाटा हो जाएगा
और नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है वह तो भव में जाने के लिए आड़ा प्रतिबंध जैसी है, वो भव भ्रमण में जाने नहीं देगा ज्ञानी, वो भ्रमण मिटाने की बात करेगा और वही उपाय और वही इलाज बताएगा। क्यों? कारण कि जिसको आत्मार्थ के सिवा दूसरा कोई अर्थ नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, ज्ञानी को तो आत्मार्थ के सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, उसको कोई स्प्रुआ नहीं है, दूसरी बात नहीं है, और आत्मार्थ भी साध करके प्रारब्ध वशात जिसका देह है वो आत्मार्थ को साधते हैं और जो शरीर रहा है आयु कर्म बाकी है वो पूर्व प्रारब्ध अनुसार है, और देह है तो देह की क्रियाएं भी है वो भी पूर्व प्रारब्ध वशात है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आत्मार्थ भी साध करके प्रारब्ध वशात जिसका देह है ऐसे ज्ञानी पुरुष की आज्ञा वह फक्त आत्मार्थ में ही अगले जीव को प्रेरणा करता है, जो सामने जीव आता है उसके समागम में आता है उसको आत्मार्थ में ही प्रेरणा करते कि देखो तेरा आत्मकल्याण आत्मा का कल्याण का प्रयोजन इस तरह से सिद्ध होगा, इस तरह से प्राप्त होगा। क्योंकि उसको भी आत्मार्थ का ही प्रयोजन है तो दूसरों को भी आत्मार्थ में ही लगाएगा, दूसरी दूसरी बात में लगाएगा नहीं, जिसको आत्मार्थ का साधन नहीं है वो दूसरे दूसरे कार्य में लगा देगा, तुम ऐसा करो वैसा करो विधि करो विधान करो वो करो वो करो लगा देंगे, इससे कोई आत्मकल्याण होता नहीं है। और इस जीव ने तो पूर्व काल में कभी कुछ आत्मार्थ जाना नहीं, हमारे जीव ने आत्मकल्याण कैसे हो वो बात तो कभी जानी नहीं, आत्मकल्याण किया ही नहीं, किया होता तो अभी यहां होता नहीं, उल्टा आत्मार्थ विस्मरण रूप से चला आया है, आत्मार्थ तो जाना नहीं लेकिन आत्मार्थ को तो विस्मरण कर गया है, कुछ भी करता है लेकिन आत्मकल्याण होता है कि नहीं होता है उसको खुद की खुद को खबर नहीं होती, कुछ ना कुछ कर लेता है। जो भी संप्रदाय में जीव जन्म लेता है उस संप्रदाय की क्रियाएं या कार्य पद्धति जो भी होती है वो कर लेता है, उनको खुद को पता नहीं है कि मेरा आत्मकल्याण हुआ कि नहीं हुआ, होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है, और विश्वास भी नहीं होता है, मालूम नहीं, हम तो करते हैं ऐसे करते करते शायद हो जाएगा, ऐसा ही आनंद गंजी जैसे लिखते हैं अंधो अंध पला है, उसको समझाने वाले भी अंधे और इसके पीछे चलने वाले भी अंधे, अंधो अंध पड़ा है, धर्म जिनेश्वर गांव रंग धर्मनाथ भगवान के स्तवन में वो कहते हैं अंधे के पीछे अंधे चला जाता है, खुद को भी आत्मकल्याण मालूम नहीं, दूसरों को जो अनुसरण करने वाले को भी आत्मकल्याण की कोई बात मालूम नहीं है, उल्टा आत्मार्थ विस्मरण रूप से चला आया है, यह अपनी कल्पना करके साधन करे, क्या करे, कल्पना करे कि ऐसा करने से आत्म कल्याण हो जाएगा, ऐसा कल्पना करके आत्म साधन करे, उससे कोई आत्मार्थ नहीं होगे, इससे आत्म कल्याण होगा नहीं। कल्पना कर ले कि ऐसा करने से आत्म कल्याण हो जाएगा, इससे कोई आत्म कल्याण होगा नहीं, ये कल्पना का मार्ग नहीं है, ठोस वास्तविकता का मार्ग है, नक्कर। बिल्कुल कल्पना इसमें नहीं चले, जितनी कल्पना उतना भी प्रयास, और इसका फल क्या, संसार दुख और परिभ्रमण, दूसरा कुछ नहीं। यह अपनी कल्पना करके आत्म साधन साधन करे, धर्म साधन करे, उससे आत्मार्थ नहीं होता है, आत्मार्थ तो नहीं होता, और उल्टा आत्मार्थ आत्म कल्याण करता हूं ऐसा दुष्ट अभिमान होता है। देखो, आत्म कल्याण तो होता नहीं, लेकिन मैं मेरा आत्मा का कल्याण कर रहा हूं ऐसा एक प्रकार का अभिमान होता है, तो अभिमान दुखदायक होने से उसको दुष्ट अभिमान कहने में आता है, वो आत्मा का घातक है। किस तरह से मालूम है, तो ये कहेंगे कि दान देता है आत्मा का घातक होता है, शास्त्र पढ़ता है आत्मा का घातक होता है, उपवास करता है आत्मा का घातक होता है। आप कैसी बात करते हो कि हाँ होता है, कैसे होता है, कि जिस विधि से आत्म कल्याण नहीं होता है उस विधि को आत्म कल्याण की विधि मान लिया, ये श्रद्धा ज्ञान की भूल हुई, ग्रहित मिथ्यात्व हुआ। मिथ्यात्व तो था लेकिन और तगड़ा तीव्र मिथ्यात्व हो गया, तब ग्रहित मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व तीव्र होता है तब अग्रहित में से ग्रहित हो जाता है। जैन कुल में आया अग्रहित मिथ्यात्व लेकर के, और धर्म साधन अविधि से किया, विधि पूर्वक नहीं किया, ज्ञानी की आज्ञा से ग्रहित मिथ्यात्व में आ गया। क्या फायदा किया, नुकसान किया। इसलिए कहते हैं कि अपनी कल्पना करके साधन करे, इससे आत्मार्थ तो नहीं होता है, उल्टा आत्मार्थ साधता हूं ऐसा दुष्ट अभिमान होता है, उत्पन्न होता है, नया दुष्ट अभिमान उत्पन्न हो जाता है, ये ग्रहित मिथ्यात्व के कारण से होता है। कषाय तो मंद होता है, धर्म बुद्धि से कोई दान देता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई त्याग करता है, कोई तप करता है, तो कषाय तो मंद होता है, धर्म बुद्धि से करता है, संसार बुद्धि से करता है तो पाप होता है। संसार बुद्धि मैंने क्या, कि ऐसा करने से मेरे को तकलीफ नहीं होगी, मेरा संसार में लीली बाड़ी रहेगी, लीली मैंने क्या, हरियाली, मेरे संसार की बाड़ी जो है वो हरी भरी रहेगी। तो संसार बुद्धि से कोई करेगा तो पाप होगा, क्योंकि उसने फल की वांछा किया। या लोक संज्ञा से करेगा कि ऐसे करने से समाज में मेरा नाम है वो थोड़ा आगे रहेगा, लोग जानेगा कि ये धर्मिष्ठ आदमी है, इतना इतना धर्म के लिए करता है, तो वो भी पाप, मान की वांछा होगी। लोक की वांछा से और मान की वांछा से जो भी धर्म साधन करने में आता है उससे पुण्य भी नहीं होता है, पाप होता है, वो तो करने लायक है ही नहीं। पहले तो अज्ञान भाव से करते आए थे, अभी तो कुछ समझ हुई समझ इस प्रकार की हुई कि गलत प्रकार से धर्म साधन करने से ग्रहित मिथ्यात्व होता है, तो ऐसा नुकसान हम अपने आप को क्यों करें?
ये भी करते हैं, सुनते तो नहीं करते
हैं, तो पूर्वग्रह छूटा नहीं। पूर्व में जो ग्रहित किया उसको पूर्वग्रह कहते हैं, वो छूटा नहीं।
पूर्व का तो आप ग्रहित कौन होगा, आदि से हम लोग का चल ही आ रहा है। ग्रहित तो अभी वर्तमान में सुनने के भी हम लोग करते जा रहे, वो ग्रहित हुआ ना।
हाँ, सुनने के बजाय सुने या बिना सुने जो भी करे ग्रहित में आ जाएगा।
हाँ,
वो ग्रहित मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व तगड़ा हो जाएगा। तो मिथ्यात्व तगड़ा होने से इसके फल में जीव तिरंज गति में चला जाता है। क्या, कहाँ चला जाता है? तिरंज गति में चला जाता है, वहां तिरंज गति का बंध पड़ता है, ऐसा होता है। इसलिए धर्म का साधन सोच समझ करके ज्ञानी की आज्ञा से करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करे तो लाभ तो नहीं होगा, नुकसान अवश्य हो ही जाएगा। वो तो है, तो सुबह चला आज्ञाकारिता का बात, आज्ञा में एकता होना सुलभ नहीं है।
है?
वो तो है ही, फिर भी आज्ञा में चलने के लिए दूसरा अपना सर्व बात छोड़ देनी पड़ेगी, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। अपनी मनमानी नहीं चले उसमें तो माथा उतर जाता है। मामूली बात थोड़ी ना। घर में, ऑफिस में मैं कहूं वैसा होना चाहिए, मेरी चलनी चाहिए,
नहीं?
तो मैं होता है कि नहीं होता है? धर्म के क्षेत्र में भी वही अपने आगे करता है, मैंने ऐसा सोचा है, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा नहीं चले। ज्ञानी की आज्ञा में तो माथा उतर जाए ऐसी बात होती है। तो अन्य मत में बहुत अच्छा पद है, हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं का यरुनु काम जूने, प्रथम पहलू मस्तक मुखी वर्ता वर्ते लेवु नाम जूने। हरि के हरिनाम मार्ग पर चालू हो तो माथू मुकी ने नाम लेव के मारे मार्ग पर चालू है, बाकी कायर मानसो नो आमा काम नहीं, माथो उतारी मुके उतारी सके एनु काम है। अन्य मत में भी वो बात इतनी तो चली है। माही पीड़ाते मां सुख माने देख नारा नाजे जोने। मार्ग में अंदर उतरा वो तो मां सुख तो मानेगा, और बाहर जो रहा बोले करे हमको तो कितनी अशांति है, इनको तो कोई दुख नहीं है, शांति से अपना काम करता है, शांति से सोता है, शांति से रहता है। इसलिए मार्गानुसार लोगों ने पद बनाए, ऐसे ऐसे जो पद बनाए ना वो मार्गानुसार ही सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। क्या कहते हैं कि उल्टा आत्मार्थ में साधता हूं ऐसा दुष्ट अभिमान उत्पन्न होता है, कि जो अभिमान जीव को संसार का मुख्य हेतु है, ऐसा दुष्ट अभिमान जीव को संसार में परिभ्रमण कराने का मुख्य कारण है। धर्म करते करते संसार परिभ्रमण बढ़ाता है, इसलिए 680 में लिखा है, 680 में इसलिए लिखा है कि आत्म कल्याण करता हूं ऐसा मानकर कल्याण करता है, हमारा तो हृदय रोता है, ऐसा लिखा ना, हमारा हृदय है रोता है। कल्याण का मार्ग को और परमार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जानने वाला, नहीं समझने वाला अज्ञानी जीव अपनी मति कल्पना से मोक्ष मार्ग को कल्पना करके विविध उपाय में प्रवर्तन करने पर भी अनेक प्रकार का उपाय करता है। कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई उपवास करता है, कोई भक्ति करता है, मोक्ष पाने के बदले संसार परिभ्रमण करते हैं, मोक्ष तो नहीं पाते हैं उल्टा ना संसार परिभ्रमण बढ़ाते हैं, ऐसा जानकर निष्कारण करुणाशील ऐसा हमारा हृदय रोता है। हमको तो रोना आता है, अरे 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 ये जीव क्या करता है, संसार छूटने की जगह वो संसार बढ़ाने का काम करता है। धर्म के क्षेत्र में तो संसार छूटना चाहिए, मिटना चाहिए, इसकी जगह उसका संसार बढ़ जाता है। वो ज्ञानी का हृदय रोता है, कह रहे बेचारे भोले जीव है, समझते नहीं आत्मकल्याण कैसा होता है, वो समझते नहीं है, उल्टा साधन कर बैठते हैं। तो संसार परिभ्रमण का मुख्य हेतु है जो बात स्वप्न में भी आती नहीं, धर्म करने के स्वप्न में भी जो बात आती नहीं है, वह जीव मात्र फालतू की कल्पना से साक्षात्कार जैसे गिने तो उसे कल्याण नहीं हो सके। वो ध्यान का बात क्या है, क्या करते हैं कुछ लोग जो है वो बिना समझे बिना पद्धति को ग्रहण करके सीधे ध्यान में बैठ जाते हैं, उसको कोई ध्यान सिखाता भी है वो भी जानता नहीं है ध्यान क्या चीज है, सिखाने वाला भी वो मन मशीन काय का प्रयोग कराता है, आत्म ध्यान होता नहीं उसमें। और आत्म साक्षात्कार होने में ऐसी कोई बात होती नहीं, ऐसी बात उनको होने लगती है कि हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा अनुभव हुआ, हमको कैसा अनुभव हुआ, हमको ऐसा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा, ऐसा सुनने लगा, कोई ना किसी को सुनाने सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, चित्र विचित्र परिस्थिति उसमें पैदा होती है। ऐसी चित्र विचित्र परिस्थिति की बात आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्वप्न में भी नहीं होती है। क्या लिखते हैं कि जो बात स्वप्न में भी आती नहीं है वह जीव मात्र फालतू की अपनी कल्पना से साक्षात्कार जैसी गिन लेता है। चित्र विचित्र परिस्थिति हो जाए तो उसको लगता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। अरे क्या हमको बहुत बड़ा तेज दिखाई देता है, पीला 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 एकदम पीला, बहुत तेज देख लिया हमने, साक्षात्कार हो गया। ये बात स्वप्न में भी है नहीं, तो उससे कल्याण नहीं हो सके, उल्टा ना अकल्याण हो जाएगा, कल्याण तो नहीं होगा और कल्याण होगा। और यह जीव पूर्व काल से अंध चला आया है, पूर्व काल से भी अंधा चला आया है, फिर भी अपनी कल्पना से आत्मार्थ मान ले, पूर्व काल में भी अंधश्रद्धा से चला है और वर्तमान में भी अंधश्रद्धा से कल्पना से आत्मार्थ को मान ले, आत्मकल्याण को मान ले, तो उसमें सफलपना नहीं होता। यह बात एकदम समझ सके ऐसा प्रकार है, समझ में आए ऐसा प्रकार है, साव समझ सका ये बात है कि पहला कभी આત્મકલ્યાણ નો માર્ગ જાણ્યો નથી, વર્તમાનમાં પણ અંધશ્રદ્ધાથી કરે છે, તો એમાં આત્મકલ્યાણ ન થાય એ વાત સાવ સમજી શકાય એવો પ્રકાર છે કે એમાં કઈ આત્મકલ્યાણ થાય નહી. દેખો કૃપાલુ દેવને બચાયા હૈ સંપ્રદાય કે જીવો કો ઉન માર્ગ મે જાતે હુએ બચાયા હૈ. દેખો એસે સંસાર બઢ જાયેગા, ધર્મ તો હોગા નહીં, આત્મકલ્યાણ તો હોગા નહીં, ઉલટાના સંસાર બઢ જાયેગા. ઇસલિયે એસા જાનને મે આતા હૈ કે જીવ કા પૂર્વ કાલ મે સભી ઉલટે સાધન વિપરીત સાધન માઠા સાધન લિખું છે ગુજરાતીમાં, હિન્દી તો ક્યાં ક્યાં હોગા, હિન્દી ગ્રંથ નહીં કહી શકતા. માઠા સાધન મને ક્યાં કર્મ બાંધ્યા, એને ખરાબ કર્મ બાંધ્યા, ખરાબ સાધન બોલતે હૈ ઉસકો, ઠીક. ધર્મ કા સાધન ઓર ખરાબ સાધન કે આ ખરાબ સાધન. જીવને પૂર્વકાળ મે સભી ખરાબ સાધન ઉલટે સાધન કે ઉસ કલ્પિત સાધન મિટને કે લીએ અબ ક્યા કરના, કે એસે ઉલટે બિના સમજે કલ્પિત સાધન મિટને કે લીએ અપૂર્વ જ્ઞાન કે સિવા દૂસરા કોઈ ઉપાય નહીં હૈ. ઇસલિયે સચ્ચા અપૂર્વ જ્ઞાન ચાહીએ. આત્મકલ્યાણ જિસ જ્ઞાન સે હુએ એસા સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોના ચાહીએ કે એસે કલ્યાણ હોતા હૈ કે નહીં હોતા. અપને કો માલુમ પડના ચાહીએ કે મેરા આત્મકલ્યાણ હો રહા હૈ યા નહીં હો રહા હૈ. એસા અપૂર્વ જ્ઞાન કે સિવા દૂસરા કોઈ ઉપાય નહીં હૈ. તો પ્રશ્ન એ ખડા હો જાયેગા કે એસા અપૂર્વ જ્ઞાન કેસે હોતા હૈ, કેસે હુએ હમકો. ઉસકા ઉત્તર દેતે હૈ કે યે અપૂર્વ વિચાર બિના ઉત્પન્ન હોના સંભવ નહીં હૈ. અપૂર્વ વિચાર મેને ક્યા વિચાર, કે લોભ કે માન કે સભી પ્રકાર કે અભિપ્રાય કો છોડ કરકે અકેલા એકાંત આત્મકલ્યાણ કા વિચાર, આત્મકલ્યાણ કા અભિપ્રાય ઉસકો અપૂર્વ વિચાર કહેને મે આતા હૈ. દેખિયે અપૂર્વ વિચાર માને ક્યા, કે જીવને આત્મકલ્યાણ કા વિચાર તો કભી કભી કિયા હૈ લેકિન સામાન્ય સાધારણ કિયા હૈ. દેખો ભાઈ સંસાર કે કાર્ય કરતે કરતે અપને પાસ જો ભી સમય શક્તિ બચે થોડા ભાગ કર લેના, જીતના હોય ઉતના કર લેના, લેકિન અપના ડ્યુટી અપના ફરજ અપના સંસાર કે કાર્ય વો પક્કા રખના, વહાં કચ્ચા કામ નહીં રખના. ફિર જો ભી હો એસા કરેંગે, જીતના હો સકે ઉતના કરેંગે. તો આત્મકલ્યાણ કા અપૂર્વ વિચાર નહીં હૈ, એસા બહુત બાર કિયા હૈ, પૂર્વાનું પૂર્વ કિયા હૈ. અપૂર્વ મેને ક્યા, કે કિસી ભી કિંમત પે આત્મકલ્યાણ કર લેના હૈ, કોઈ ભી કિંમત લગ જાય તો લગ જાય ભલે, કોઈ કિંમત મેં ક્યા હૈ માલુમ હૈ, મેરા સંસાર ઉજડ જાય તો ભલે હી ઉજડ જાય. હા ક્યો, કે સંસાર કા નાશ મે હી મોક્ષ હોતા હૈ. સંસાર મોક્ષ હોતા હૈ તો સંસાર કા નાશ હોતા હૈ, દોનો સાથ રહેતા હૈ. तो अपूर्व विचार में वो बात आती है कि संसार खत्म हो जाए तो भले, उजड़ जाए तो भले, संसार का जो भी होना है हो जाओ, मुझे मेरा आत्म कल्याण कर लेना है। 128 पुत्र में आया कि नहीं आया, चाहे जैसा हो जाए, कितना भी उत्सर्ग हो, कितना भी परिश्रम हो, कितनी आदि व्याधि उपाधि दुख कुछ भी आ पड़ो, मुझे मेरा आत्म कल्याण इसी भाव में कर लेना है, कर लेना है, वो कर ही लेना है। ऐसा अपूर्व विचार आए बिना कभी अपूर्व ज्ञान होता नहीं, और अपूर्व ज्ञान हुए बिना कभी आत्म कल्याण होता नहीं। बात तो और जगह ले जाएंगे। अभी कहते हैं कि ऐसा अपूर्व विचार बिना आत्मज्ञान अपूर्व ज्ञान होता नहीं, अपूर्व बिना संभव नहीं है, अपूर्व विचार बिना अपूर्व ज्ञान संभव नहीं है, और यह अपूर्व विचार अपूर्व पुरुष के आराधन बिना दूसरा किसी भी प्रकार से जीव को प्राप्त हो ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा अपूर्व विचार भी कोई अपूर्व पुरुष के आराधन बिना, अपूर्व पुरुष का आराधन बिना दूसरा किसी भी प्रकार से जीव को प्राप्त हुए ऐसा दिखता नहीं है।
आराधन शब्द का प्रयोग,
हाँ, अमलीकरण की बात है। ऐसा कोई ज्ञानी अपूर्व ज्ञानी पुरुष मिल जाए और वो कहे ऐसा अमलीकरण करे, उसको आराधन कहते हैं। मात्र सुनते रहे वो बात नहीं है, वो कहे ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए तो उसके सिवा अपूर्व विचार नहीं होगा, और अपूर्व विचार बिना अपूर्व ज्ञान नहीं होगा। ऐसे विचारते हुए ऐसा ही सिद्धांत मालूम पड़ता है, ऐसा ही सिद्धांत होता है कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन यह सिद्ध पद का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखो बात को कहाँ कहाँ ले गए कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन करे, उनको तो सर्वश्रेष्ठ ऐसा सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुबह बात आया कि नहीं, आज्ञा में एकता होना, वो आज्ञा की बात आया। ज्ञानी पुरुष के ऐसा सिद्धांत फलित होता है कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन यह सिद्ध पद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हमको शरीर का रोग मिटता है तो हम हमारे शरीर के अंग उपांग कटवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हाँ, उसमें क्या है कि भाई वो गैगरिंग होता है ना, एक उंगली सड़ती है, फिर उसका निदान ऐसा किया जाता है कि भाई आपका हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा, इधर से काटेंगे और आगे बढ़ जाएगा, उधर से काटेंगे और आगे बढ़ जाएगा, कितने दफे काटेंगे, अगर एक ही दफे काट करके ठीक होना है तो यहाँ से कटवाओ, जिंदा रहना है तो बोले भी काट दो, एक हाथ से चला लेंगे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कृत्रिम हाथ बिठा देंगे, कोई कुछ भी करेंगे लेकिन हमको मरना नहीं है। तो यहां कहते हैं कि सिद्ध पद की प्राप्ति होगी तो न कभी मरना न कभी जन्म लेना, सादी अनंत काल तक अनंत सुख में विराजमान रहना होगा। उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन करना। हमारा डॉक्टर की आज्ञा का आराधन करता है कि नहीं करता है? ये ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन आत्मा के लिए करना है। एक मरण क्या है? कोई भी मरण नहीं आएगा, अनंत काल के सभी मरण समाप्त। यह सिद्ध पद का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और यह बात जब जीव को मानने में आती है, यह बात अंतर से जब जीव को स्वीकार करने में आती है, मानने का मतलब क्या है? स्वीकृत होती है कि अरे मुझे अभी जन्म मरण करना नहीं है, तब से ही दूसरे प्रकार के सभी दोष का उपशमन और नाश होने का शुरू होता है। उपशमन भी नहीं होता और नाश भी नहीं होता। जब ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहने का स्वीकृति आती है, तभी उसके सभी दोष नाश होने की तैयारी होती है, उपशमन होने की तैयारी होती है, इसके पहले नहीं होती। इसलिए दूसरे दोष मिटाने के लिए भी ये मास्टर की है, ज्ञान की आज्ञा में आ जाओ। बहुत बहुत अच्छा बात किया है। ये जो एक पैराग्राफ 511 वाला लिया है, ये तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रही। फिर आज्ञा में आ गया, उस वक्त क्या दिमाग लगाने का है? देखो, ये बड़े बड़े नेता हैं, उसके बॉडीगार्ड रहते ना, तो लाखों की मेदनी होती है, लाखों की सभा होती है, वहां वो बिंदास भाषण करते कि नहीं करते? अगर डरते डरते भाषण करते तो भाषण पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, नहीं हो सकते, जो सब्जेक्ट छूट जाएगा कि यहां से गोली आएगी, वहां से कोई गोली मारेगा, इधर से कोई पिस्तौल चलाएगा, क्या होगा, वो तो भाषण नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों लोग सामने, हजारों लोग बैठे हैं। लेकिन उनको मालूम है कि मेरे आगे पीछे बहुत से बॉडीगार्ड खड़े हैं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आराम से भाषण करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? वो अपने आप को सेफ मानता है कि मैं सेफ गार्ड हो गया, मुझे कोई मार सकता नहीं है। ऐसे ज्ञानी की आज्ञा में आया, वो सेफ गार्ड हो गया, जाओ। उसको कोई संसार में भटका नहीं सकता। वहां तो बहुत से बॉडीगार्ड थे, यहां तो एक ज्ञानी की आज्ञा क्या आ गया, उसे ही सलामत संसार को पार कर जाएगा। संसार के समुद्र में तूफान तो आएंगे, बहुत से तूफान आते हैं, अनेक प्रकार के उदय के तूफान आएंगे, लेकिन जो ज्ञानी की आज्ञा में है वो बच जाता है, और आसानी से बच जाता है। कोई बचता है? दूसरे को बचने का तो कोई उपाय नहीं है। तो जिसने ऐसा निर्णय लिया, जिस मुमुक्षु जीव ने ऐसा निर्णय लिया कि मुझे ज्ञानी की आज्ञा में रहना है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। भले ही दूसरे बड़े बड़े अक्कल वाले हो, वो इसके आगे कुछ नहीं है। और वो भले भोंदू जैसा दिखे, कैसा दिखे, लेकिन उसने जो अक्कल चलाई है वो अच्छे अच्छे अक्कल वाले ने नहीं चलाई, क्योंकि संसार में तो बुद्धि वाले को लोग ज्यादा मानते हैं। लेकिन ऐसा निर्णय किया, उसने बराबर बुद्धि चलाई है, उसकी विचार शक्ति यथार्थ है, बाकी सब बुद्धि है वो संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। गुरुदेव ने एक आदमी को बोला था, बड़ा सेठ था, पैसे वाला आदमी था, उसके बंगले में ठहरे थे गुरुदेव। तो उनका इंप्रेशन ऐसा था कि बहुत बुद्धि वाला है, इतना बुद्धि वाला है कि कहीं भी कोई भी तकलीफ में आ जाए तो उनको पूछने का एडवाइस लेंगे, भाई हम तो तकलीफ पा रहे हैं, कोई आप कोई रास्ता बताओ। ऐसे बुद्धि वाला गिना जाता था, और ऐसा इनका छाप भी था भी बुद्धि वाला। गुरुदेव ने एक दफे एकांत में बैठे थे तो बोले कि देखो लोग कहते हैं कि आप बहुत बुद्धि वाले हैं, व्यवहार कुशल है, पांच में पूछाते हैं, पांच में पूछा है वाक्य ना, पंच में रखते हैं आपको, पंच में ले जाते हैं, न्याय करो वैसा करो वैसा। सही बात बोलू, मनुष्य भोग मिला है, जैन धर्म मिला है, ऐसा योग भी मिला है, मैंने आपके यहाँ आ गए हम लोग ऐसे करके, ऐसा योग भी मिला है, बुद्धिमानी हो तो आत्मा का कल्याण कर लो, वरना आपकी बुद्धि आपको संसार में परिभ्रमण कराएगी। ये जो संसार की बुद्धि है ना, वो तो भटकाएगी। सही बुद्धि हो तो आत्म कल्याण कर लो, ऐसा मौका बार बार आने वाला नहीं है, ऐसा बताते थे। उसके गले कितनी उतरी वो तो भगवान जाने, लेकिन गुरुदेव ने तो करुणा से बात किया, देखो ये करने लायक है तो उतना करने लायक है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बार बार आती नहीं। और देखो ना, ऐसे मनुष्य पर्याय कितने की आयु पूरी होती तो चले पूरी हो जाती कि नहीं हो जाती, क्या फायदा, मनुष्य होने का फायदा क्या, खाया पिया और सब खोया, क्योंकि परिभ्रमण बड़ा खड़ा रहा, कोई फायदा तो हुआ नहीं आत्मा को। इसलिए ये एक सर्वोत्कृष्ट और सुगम उपाय है कि अगर ज्ञानी पुरुष मिल जाए और उसकी आज्ञा में रहना हो जाए तो बहुत सुगमता से, और एकमात्र उपाय यही है कि जिससे जीव स्वयंभू रमण जैसे समुद्र को भी, संसार समुद्र को भी तीर जाता है, वरना संसार को तीरना वो आसान नहीं है। अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया, भटकते भटकते बीत गया है अनंत काल।
ऐसे ज्ञानी मिले क्या, ऐसे ज्ञानी मिले क्या,
जरूरत लगे तो मिलेगा। पहले तो ये बात है कि हमको जरूरत महसूस हुई के नहीं हुई। देखो रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है, लेकिन पानी की तृषा लगे तो पानी ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा कि मर जाएगा, तो भी कहीं न कहीं पानी ढूंढो, जैसे कैसे भी पानी चाहिए हमको। ऐसी तृषा लगे तो वहां तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहां तो ज्ञानी मिल ही जाएगा, गारंटेड है। अपने को जरूरत महसूस होनी चाहिए, ये बात है। जहां तक जरूरत नहीं लगती है जीव प्रयास करता ही नहीं है। जगत में सब कुछ है, जहर भी है और अमृत भी है, जरूरत लगे वो ढूंढेगा, कितनी जरूरत लगी है उस पर आधारित है बात। इसके बिना चलेगा नहीं तो पूरा प्रयास होगा, पूरा प्रयास होगा तो काम हो ही जाएगा। जगत में है तो सही, नहीं है ऐसा बनता नहीं है। यहां तक
हो, 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 हो।